તારીખ 17/9/1997 શ્રી સમયસાર ગાથા 69 અને 70 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સ્વયં પ્રવચન નંબર 26
જો અનાત્મ પરિણામ હોતે હૈ પ્રારંભ કી ગાથા 69 મિલા જબ તક અબ જબ તક યહ જીવ આશ્રમ કે આત્મા કે વિશેષ કો નહીં જાણતે જાણે તબ તક વહ અજ્ઞાની રહેતા હુઆ આશ્રમો મે સ્વયં લીન હોતા હુઆ કર્મો કા બંધ કરતા હૈ યહ કથન ગાથા દ્વારા કહેતે હૈ ક્યા વિષય લિયા હૈ આશ્રમ માને જીવ કે વિભાવ પરિણામ જીવ કે વિભાવ પરિણામ શ્રદ્ધાન મેં હોતે હૈ તો વિપરીત શ્રદ્ધાન હોતા હોતી હૈ હોતા હૈ શ્રદ્ધાન મેને અપને રૂપ સ્વીકાર કરના અપને સ્વરૂપ કો છોડ કર અપને રૂપ મે અન્ય ભાવો કો વિભાવ ભાવો કો અપને સ્વરૂપ રૂપ સ્વીકાર કરના એ શ્રદ્ધા કા વિપરીત પના હૈ ઓર શ્રદ્ધા કા વિભાવ હૈ જ્ઞાન મે અપના સ્વરૂપ કો છોડ કરકે યાને અપને સ્વરૂપ સે અનજાને રહે કરકે જો ભી વિભાવ હૈ કર્મજન્ય મેને કર્મ કે નિમિત્ત સે ઉત્પન્ન હુએ હૈ એસે સૂક્ષ્મ જ્ઞાન આદિ સબ લે લેના બાહ્ય જ્ઞાન જો પર પદાર્થ કા અવલંબન લેકર જાણતા હૈ और पर को अपने रूप जानता है पर भाव को और परद्रव्य को अपने रूप जानता है ये ज्ञान का विभाव है। उपयोग की चंचलता वो भी ज्ञान का विभाव है। वो भी अपने रूप अनुभव करना ये भी विपरीत ज्ञान है। चारित्र में शुभ अशुभ दो प्रकार के भाव होते हैं और उसमें राग द्वेष आदि भी होते हैं। अनेक भेद प्रभेद हैं तो कषाय उनके भेद प्रभेद बहुत हैं। प्रकृतियां उसकी दो है शुभ और अशुभ। उसको भी अपने रूप अनुभव करना वो तो चारित्र गुण का विभाव है। ऐसे विभाव भाव है तो आश्रव भाव है। आश्रव द्रव आश्रव तो वो है जो कर्म के परमाणु है कार्मण वर्गणा के। इसमें जीव के प्रति समन होने के लिए आना और उसमें प्रकृति का पैदा होना ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी आदि ये आश्रव है। प्रभावित होते हैं पहले वो पड़े थे कर्म वर्णना में सामान्य कर्म रूप से वो पड़े थे। जीव के विभाव भाव के निमित्त पाकर के उसमें प्रकृति और जीव के साथ संबंध आने की पूर्व तैयारी उसको कहते हैं आश्रव। और उसके जो निमित्त से जिस भाव से जिस भाव के निमित्त से ये होता है द्रव्याश्रव, उस भाव को नैमित्तिक भाव को कहते हैं भावाश्रव। वो क्या है? दोनों अनात्म तत्व है, दोनों अनात्म तत्व है, आत्म तत्व नहीं है। क्योंकि ये ग्रंथ सारा है तो तत्व दृष्टि का ग्रंथ है, समय सार ग्रंथ तो तत्व दृष्टि का ग्रंथ है। तो तत्व दृष्टि से क्या है कि किसी भी प्रकार के विभाव हो तो आश्रय भाव है और अनात्म परिणाम है, आत्म परिणाम नहीं है। चाहे वो ज्ञान का विभाव हो तो भी वो आश्रय पर निमित्त है, आश्रय का कारण है। चाहे योग गुण का कंपन रूप विभाव हो तो भी आश्रय का कारण है। इसे आश्रय दो प्रकार के हैं, भावाश्रय और द्रव्याश्रय। तो अनात्म तत्व है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उस आत्मा को यहाँ समय सार कहा है। शुद्ध चैतन्य समय सार स्वरूप आत्मा है, जो आत्मा का अनादि अनंत मूल ध्रुव स्वरूप है, अपरिणामी तत्व है, वो आत्मा है। वो आत्मा के और आश्रम के का जो अंतर है, तफावत है, भेद है, जो एक नहीं है, फिर भी जीव एक रूप अनुभव कर रहा है अनादिकाल से। जहां तक उसको मालूम नहीं पड़ता कि इसमें भेद है, अंतर है, वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, तब तक वो अज्ञानी रहता है। अज्ञानी रहता है वहां तक संसार में परिभ्रमण करता है। तो अज्ञानी रहता है तो उसका परिभ्रमण कैसा होता है कि आश्रवों में स्वयं लीन होता हुआ उन विभाव भावों में अपना रूप जान करके, अपना स्वरूप उसको जान करके उसमें लीन रहता है, तल्लीन रहता है, एकाकार होता है, तो कर्मों का बंध करता है, उसको नया कर्म का बंध होता है। क्योंकि बंध का कारण आश्रम है, बंध का कारण आश्रम है। वो तो पांच प्रकार के लिए हैं कुमार स्वामी महाराज ने सूत्र जी में, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद प्रसाय योग बंध हेतव। पांच सबसे बड़ा कौन है आश्रय का कारण? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में अज्ञान आ गया, मिथ्यात्व ज्ञान भी एक ही बात है क्योंकि साथ ही रहता है। मिथ्यात्व प्रमाद प्रसाय योग, मिथ्यात्व अविरति अत्याग भाव, मिथ्यात्व फिर आ गया अविरति, फिर प्रमाद प्रसाय योग, ये सब आएगा। तो मूल में मिथ्यात्व नाश करने का जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है समय सार जी, तो मिथ्यात्व का अभाव करने के हेतु से और आत्मा को ज्ञानी बनाने के हेतु से लिखा गया है। इसलिए ये संबोधन अज्ञानी जीव को है। ये जीव कहां तक अज्ञानी रहता है? अब अज्ञानी तो संसार के सभी जीव हैं, संसार के सभी जीव अज्ञानी, तो सबों की यही हालत है। जैसे हम समय सार पढ़ के समझे कि इतने प्रकार के विभाव भाव हैं, वो तो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य घन है। तो हमने आश्रय और आत्मा के बीच में अंतर जाना कि नहीं जाना? तो आचार्य महाराज ने साथ में लिखा है कि जहां तक वो आश्रम में लीन रहता है वहां तक वो भेद नहीं जानता, पर भेद नहीं जानता वहां तक लीन रहता है। तो समय सार पढ़ करके जाना फिर भी आश्रम में लीनता रही, विभाव में लीनता रही, तो जाना नहीं जाना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो अज्ञानी की कक्षा में आता है। सभी अज्ञानी की एक सी हालत है। अब कुछ विशेष बात वो है कि संसार के बहुभाग जीव तो इस विषय को सुनने को भी लायक नहीं है। सुनने को लायक नहीं होने से उनको सुनने को नहीं मिलता। ऐसे अरबों मनुष्य हैं इस विश्व में तो उनको ये बात सुनने को भी नहीं मिलती। कुछ लोगों के पास ये ग्रंथ है लेकिन उनको अरुचि है तो वो खोलते नहीं, पढ़ते नहीं, समझने का प्रयास करते नहीं। तो जैसे दूसरे दुर्भागी है वैसे वे लोग भी दुर्भागी है। इनकी चर्चा छोड़ दे। अब यही बात कि जो लोग इस बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, उनको हम कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं उनको? परंपरागत रूढ़िगत रूप से मुमुक्षु कहते हैं। वास्तव में मुमुक्षु है कि नहीं ये एक दूसरी बात है। इसलिए क्यों कि मुमुक्षु का यह स्वरूप है कि एक मोक्ष के लिए ही प्रयास करें। क्या? एक मोक्ष के लिए ही प्रयास करें। यानी मुर्दे की भाषा में कहे तो ये श्रीमद्जी का वचन है 254 पत्र में, मुआसक्ति से अकुलाकर, अपने मुआसक्ति के परिणाम में जिसको अकुलात हुई रस नहीं आया, और एक मोक्ष के लिए जो प्रयास कर रहा है उसको वो कहते हैं मुमुक्षु। गुरुदेव कहते हैं कि जो पूर्णता का लक्ष्य रखता है, यानी मोक्ष का लक्ष्य रखता है, लक्ष्य माने ध्येय रखता है, साध्य के स्थान में रखता है, एकमात्र मोक्ष अभिलाष है, उनको शुरुआत होती है। पूर्णता के लक्ष्य से वास्तविक शुरुआत होती है। किसकी? मुमुक्षुता की। ज्ञान दशा की नहीं, मुमुक्षुता की शुरुआत होती है। क्योंकि ज्ञान दशा तो आत्मानुभव के बाद है, आत्मानुभव होने से ज्ञान दशा है। अब तो ध्येय निश्चित हुआ कि मुझे संसार में कभी भटकना नहीं है, संसार की कोई चीज मुझे प्रिय नहीं है, और कभी प्रिय लग जाती है पूर्व के संस्कार के कारण से तो भीतर में आकुलता होती है। इसलिए वो आत्मा छूटने का प्रयास करता है इन भावों से, मुक्त होने के जिसकी अभिलाषा होती है, पर उसका प्रयास चालू होता है। मात्र मुक्त होने का विचार नहीं, मुक्त होने का विचार आता है दो प्रकार के जीवों को। एक प्रकार ऐसा है कि जो मुक्त होने का विचार आने पर भी मुक्त होने का प्रयास में लगते नहीं, पर एक जीव ऐसा है, योग्यता अलग अलग है, कि जो मुक्त होने के विचार में आते ही मुक्त होने का प्रयास में लगते हैं। ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं। हम दोनों को मुमुक्षु कहते हैं क्योंकि वो मुक्ति का विचार करता है, इसलिए रूढ़िगत से दोनों को मुमुक्षु कहते हैं। वास्तव में मुमुक्षु दो में से एक ही है, एक नहीं है, क्योंकि उसको शुरुआत नहीं हुई। गुरुदेव के ज्ञान के हिसाब से या अनंत ज्ञानियों के ज्ञान के हिसाब से, एक ज्ञानी का मैंने अनंत ज्ञानियों का वही ज्ञान है, उनको मुमुक्षुता की शुरुआत नहीं हुई है। अब मुमुक्षुता की जो शुरुआत होती है वो तो जघन्य रूप से यहां चालू हुई, फिर वो आगे बढ़ता है, उसका मुख्यात्म मंद होता है, उसके ज्ञान में हित अहित रूप परिणामों का विवेक होता है, कितनी निर्मलता आती है ज्ञान में, पर उसके विषय कषाय के परिणाम का रस फिक्के हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, निरस हो जाता है। ऐसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र के तीनों प्रमुख गुण जो मोक्ष मार्ग में आत्माभिमुख होकर के सम्यक होकर के परिणमन करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग रूप है, मोक्ष के कारण रूप है, वो तो तीन प्रमुख गुण की मुमुक्षुता की भूमिका में जो परिणमन में फर्क हो गया वो तो इस प्रकार से तीनों में हुआ। तो यहाँ कहेंगे कि ये मुमुक्षुता हुई पर उसमें वो आगे बढ़ा, तो जघन्य मुमुक्षु से लेकर मध्यम कोटि का मुमुक्षु बनेगा, फिर उसी प्रयास में आगे बढ़ करके जब वो भेद ज्ञान करने के लायक होगा तब ये उत्कृष्ट कोटि का मुमुक्षु बनेगा, और जो उत्कृष्ट कोटि का मुमुक्षु बनेगा वो आगे बढ़ करके ज्ञान दशा में प्रवेश करेगा, यानी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करेगा। तो यहाँ भेद ज्ञान का विषय चलेगा, आत्मा और आश्रव का भेद जो जाने, क्या आत्मा और आश्रव का भेद जाने, विशेषांतर में भेद जो जाने, तो हिंदी हिंदी और गुजराती जो है जीते ने उसमें विशेषांतर का अनुवाद किया है भेद, मेरे आत्मा आश्रव जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, और माधवी में विशेषांतरम, संस्कृत में विशेषांतरम ऐसा लिया है, उसको कहते हैं भेद, भेद मैंने अंतर तफावत। तो ये भेद ज्ञान तक पहुंचा हुआ जीव के लिए गाथा चल रही है, इसके लिए चल रही है। जो जीव जो मुमुक्षु उत्कृष्ट कोटि का नहीं है, जिसको अंदर में अंतर में परिणमन में भेद ज्ञान का प्रयोग नहीं चल रहा है, उनको ये जानने का विषय अवश्य है, लेकिन उसको पहले भेद ज्ञान तक पहुंचना होगा। जहां तक वो भेद ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाता है वहां तक इस गाथा का परिणमन का जो मर्म है वो समझ में नहीं आएगा। गाथा तो गाथा है, उसका शब्दार्थ कर सकते हैं विद्वत्ता के कारण से, उसका भावार्थ, उसका मतार्थ, अन्य मत में ऐसी बात नहीं है। दिगंबर साहित्य को छोड़ करके श्वेतांबर में भी वेद ज्ञान की बात नहीं है कहीं भी, 45 आगम में अन्य मत में तो है ही नहीं, वो मतार्थ है। तो शब्दार्थ भावार्थ मतार्थ और नयार्थ, इस नई का कथन है, परिणाम की चर्चा होने से ये व्यवहारने का कथन है, क्योंकि परिणाम मात्र व्यवहारने में आता है। और आगमार्थ कि आगम का मुख्य दृष्टिकोण यहां भेद ज्ञान का रहा है, सारे ग्रंथ में समय सारणी में आगम का मुख्य दृष्टिकोण आचार्य महाराज का भेद ज्ञान का रहा है। सभी अधिकारों में उन्होंने तत्व के नाम अलग अलग हैं, नव तत्व पर अधिकार लिखे हैं 11, दो अधिकार बढ़ाए हैं, एक कर्ता कर्म अधिकार और एक सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। ये दोनों अधिकार का नाम अलग अलग है, बात एक ही है भेद ज्ञान के, दो बात नहीं है। और सभी अधिकारों में विज्ञान की चर्चा भिन्न भिन्न तत्व के दृष्टिकोण से पकड़ करके किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा समय सार ग्रंथ भेद ज्ञान के प्रयास करने वाले के लिए है। जो भेद ज्ञान के प्रयास में आया है वो तो भेद ज्ञान आचार्य महाराज जिस प्रयोग दिखाते हैं वो तो प्रयोग को समझेगा। प्रयोग है वो कार्य पद्धति है, दूसरे लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ समझेंगे भावार्थ समझेंगे नयार्थ मतार्थ आगमार्थ समझेंगे लेकिन परमार्थ नहीं समझेंगे। और पूरा जो आत्मा का प्रयोजन प्राप्त होना सिद्ध होने का है वो पारमार्थिक दृष्टिकोण में है पर वही इसका रहस्य है और रहस्य को नहीं समझेंगे ये बात हो जाएगी। और दूसरी बात वो हो जाएगी कि शास्त्र पढ़ा और पांच प्रकार के अर्थ भी समझे तो मैं नहीं समझा वो बात रहेगी नहीं और परमार्थ समझा नहीं तो परमार्थ नहीं समझा फिर भी मैं समझा ये एक नई उलझन पैदा करने की परिस्थिति पैदा हुई। अगर कोई सयाना होता है समझदार होता है तो वो ऐसा समझता है कि मैं सब प्रकार का अर्थ तो समझा लेकिन इसका परमार्थ क्या इसकी जिज्ञासा में वो आएगा। और अगर वो भेद ज्ञान का प्रयोग करेगा प्रयोग तक पहुंचेगा तो उसको परमार्थ समझ में आएगा। क्यों कि जो ये भेद ज्ञान है ये विचार की भूमिका में होने के बावजूद भी प्रयोग की भूमिका का विषय है, केवल विचार की भूमिका का विषय नहीं है। जो इस भेद ज्ञान के विषय को समझ करके समय सारादि शास्त्र से सिर्फ विचार की कक्षा में रहते हैं और विचार की कक्षा को आगे बढ़ करके उल्लंघन करके प्रयोग की कक्षा में जो नहीं आते हैं उनको ये अनर्थ होने का संभव है कि मैं समझा मैं समझता हूं अब बताइए कौन से गाथा कार्य करना है। ग्यारहवीं गाथा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ गाथा है, संजीवनी बोला है गुरुदेव ने, क्या बोला है ये संजीवनी गाथा है यानी अचेतन को चेतन करने वाले व्यवहार हो अभियथो भेथो देशिलो सुधनयो मुयथम असीडो खड़ो समाधि हवदी जीवो। तो उसका शब्दार्थ और भावार्थ बहुत स्पष्ट है कि शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा में भूतार्थ आत्मा में ध्रुव आत्मा में व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार अभूत तो है ही नहीं, अभूतार्थ है असत्यार्थ है। और जो शुद्धने का विषय भूतात्मा है उसको भी शुद्ध नहीं कहते, वो भी भूतार्थ है वो भी सत्यार्थ है और उसको आश्रय करने वाला सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो बात तो बहुत सीधी सादी होने से हमको शुद्धात्मा का आश्रय करना है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है पर इतनी समझदारी तो हम लेकर के बैठे हैं समझने के लिए। फिर भी शुद्ध स्वरूप का शुद्धात्म स्वरूप का आश्रय होता नहीं, चाहते हुए भी पढ़ते हुए और समझते हुए भी। तो यहां से जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम समझते हैं पर चाहते भी हैं फिर भी हमको सिद्धात्म स्वरूप का आश्रय नहीं होता है हुआ नहीं और जीवन बहुत सा निकल गया। कारण स्पष्ट है कि आश्रय दो विरुद्ध तत्व का कभी हो ही नहीं सकता। या तो भूतार्थ का आश्रय करो या तो अभूतार्थ तत्व का जो आत्मा में नहीं है। तो अभूतार्थ तत्व कौन है कि जितना भी व्यवहार होने का विषय है वही सब अभूतार्थ तत्व है। एक समय के पर्याय को लेकर के पर्याय के विभाव और एक विभाव के निमित्त कर्म का उदय उत्सम क्षोक्षम आदि और बाहर में उसके फल स्वरूप नो कर्मादि संजोग दे और दूसरे घर मकान कुटुंब परिवार आबरू कीर्ति आदि ये अनात्म तत्व है अभूतार्थ तत्व है। उसका आश्रय हम लेते रहे हैं अनादि से पर लेना चालू है हमारा। हम समझे इस बात को कि आश्रय तो शुद्धात्मा का करना है और इच्छा भी करते हैं लेकिन आश्रय करते हैं अनात्मा का। तो वो इच्छा सही है या गलत है इसका विचार कभी हमने नहीं किया। शायद हमारी इच्छा तो है, इच्छा है और आश्रय करते क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जिस कारण से हम चाहते हुए समझते हुए भी शुद्धात्म तत्व का आश्रय नहीं करते?
उसको संस्कारों में नहीं करते, वो उनके संस्कार चले आ रहे हैं,
पूर्व के संस्कार चले आ रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो संस्कार मिटाने की कोई योजना है आपके पास? चलो एक कारण बाहर है। अब इस पूर्व के संस्कार को मिटाने की कोई व्यवस्थित योजना आपके पास है क्या? है तो कौन सी है ये बताइए।
पूर्णता का लक्ष्य चाहिए,
तो पूर्णता का लक्ष्य पहले करो। पूर्णता का लक्ष्य किसको होता है? तो जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको। क्योंकि ध्येय में दो बात नहीं चलते। सभी संसारी जीवों का ध्येय संसार का है और जो उस ध्येय को पकड़ता है उसका ध्येय होता है मोक्ष। ध्येय दो ही है, तीसरा ध्येय तो है ही नहीं कोई, या तो मोक्ष या तो इसका प्रतिपक्ष भूत संसार। संसार और मोक्ष दो ही तो ध्येय है। अनादि का संसार का ध्येय होने से हमने जितने भी धर्म साधन किए तो ध्येय अनुसार फले फूले, हमारा जो ध्येय होगा वहीं परिणाम की चाल जाएगी। जैसे हम यहाँ से निकले, हमारा ध्येय दुकान जाने का ऑफिस जाने का है तो हमारी चाल वहाँ होगी, और हमारा ध्येय घर जाने का होगा, कहाँ जाना है इसका निश्चय उसको ध्येय कहते हैं, तो घर तरफ हमारे पैर चलेंगे। बात विचार कितना भी करो रास्ते में ट्रैफिक को भी समझो लेकिन ऑटोमेटिक नहीं चलेंगे हम। ध्येय बदले बिना जितने भी साधन किए उसका फल संसार आया। इसलिए ज्ञानियों ने सबसे पहले ये योजनाबद्ध बात रखी है कि आप पहले मोक्षाभिलाषी हो, आप अपना ध्येय को बदलो। अब विचार से तो बदल देते हैं, चलो हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको संसार नहीं चाहिए। तो ये उस विषय में इसका भी कोई खास स्वरूप है। जिसको मोक्ष का ध्येय हुआ, पूर्णता का लक्ष्य हुआ, ऐसे मोक्ष का भी कोई खास स्वरूप है। ऐसे हमने कर लिया मान लिया ऐसा नहीं चलता।
आगम के अनुसार माना कि मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, तत्काल ऐसा मान लेंगे। आगम ने कहा कि मैं ध्रुव हूँ और बिल्कुल शुद्ध हूँ, पर्याय से मेरे पैर में नहीं है, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा जो ध्येय बांधा उसमें क्या भूल गई?
अच्छा,
तो ध्रुव को देख करके बांधा तो बिना देख करके बांधा, तो मेरे परिणाम आपके आंख में तो नहीं दिखते, फिर भी मेरे प्रश्न को पाप समझते हो। भाषा से मेरे परिणाम को समझते हो तो नहीं समझते हो? मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप देख के या बिना देख के बात करते हो तो शब्द से आपने मेरे भाव को समझे? ऐसे ध्रुव शब्द से ध्रुव भाव को देखा क्या? अपरिणामी भाव शब्द से अपरिणामों को देखा क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ जो ध्रुव देह है तो आश्रय के स्थान भूत देह है और ये ध्यान का विषय है। जब क्योंकि मोक्ष का ध्येय है वो आश्रय का स्थान नहीं है, पहुंचने का स्थान है, वो साध्य अवस्था है, साधक अवस्था भी नहीं और ध्यान का विषय भी नहीं। कि हमारा आदर्श है, ये हमारा ध्येय, हमको वहां पहुंचना है, वो परिणाम आश्रित है, वो ध्येय परिणाम का विषय है, मोक्ष परिणाम है। और जो ध्रुव ध्येय है वो परिणाम नहीं है, वो अपरिणामी है और वो ध्यान का विषय है। मोक्ष ध्यान का विषय नहीं होता, त्रिकाली ध्यान का विषय होता है। और ध्यान का विषय वो तब होता है जब वो ज्ञान का विषय होता है। तब ज्ञान का विषय होने से पहले किसी को ध्यान का विषय हो ही नहीं सकता। ऐसे तो अन्य मत भी ध्यान रखकर लगाते हैं आत्मा के, लेकिन उसको आत्मज्ञान है ही नहीं। तो आत्मा का ज्ञान हुए बिना ध्यान होगा नहीं। तो बात यहाँ करते रहते रही कि इसका ज्ञान करने का है, तो ज्ञान क्या करने का है? कि आश्रम और आत्मा अलग अलग है, ऐसा ज्ञान करने का है, वेद ज्ञान करने का है। भेद ज्ञान ही ध्यान का कारण है और कोई ज्ञान ध्यान का कारण तीन काल में है ही नहीं। सारे समय सार में भेद ज्ञान की चर्चा इसलिए की है कि इस भेद ज्ञान ही शुद्धोपयोग रूप ध्यान का कारण होता है और कोई ध्यान का कारण हो ही नहीं सकता। अनुभव का कारण हो ही हो सकता है, अनुभव कहो, ज्ञान कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वानुभूति कहो, एक ही बात है। तो वो ज्ञान है, वो भेद ज्ञान है। तो भेद ज्ञान तक कौन पहुंचता है? तो जो पूर्णता का लक्ष्य करता है वो पहुंचता है, ये इसकी योजना है। पूर्णता का लक्ष्य किसको होता है, इसका स्वरूप क्या? बात तो ना आगे कि जिसको पूर्णता का ध्येय है तो कृपालु देव ने तो श्रीमद जी ने तो बहुत संक्षेप में लिखा है कि एक मोत्र मोक्ष के लिए ही प्रयास करता है, दूसरा कोई प्रयास नहीं करता है। हर बात में, हर प्रसंग में, हर उदय में, हर परिस्थिति में मैं मुक्त कैसे हूँ, इसमें से मैं मुक्त कैसे हूँ, मैं मुक्त कैसे हूँ, ये उसको चलता है। छूटने का ही उसका भाव रहता है, क्योंकि वो बंद भाव उनको पसंद नहीं है, उसमें अतिराहत होती है उसको। और ऐसा हर वक्त किसको होता है कि जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है कि मुझे मुक्त होना ही है, इसमें कोई पोल नहीं होगा, मुक्त ही होना है, माने मुक्त ही होना है। ऐसा जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको मोक्ष का ध्येय होता है, और जिसको मोक्ष का ध्येय होता है उसको वेद ज्ञान तक पहुंचने की योजना कैसे स्वयं बनती है कि वो अपने परिणामों का अवलोकन में पहले आता है। क्योंकि वेद ज्ञान करना है ना, तो भेद मैंने दो जाति के भावों का अंतर देखना, विशेष अंतर, आश्रव जाति और आत्म जाति के अंतर। वो तो हम पहचानते नहीं है, हमारे परिणाम में
आसव विभाव भाव क्या है और आत्म भाव क्या है, अनात्म भाव क्या है और आत्म भाव क्या है, दुकान पर हम पहचानते नहीं, एक रूप अनुभव कर लेते हैं हर समय।
श्रीमती लोग समझाए थे,
हाँ दिगंबर के आचार्यों ने ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है कि मोक्ष समझ में मोक्ष समझ में आता है, यानी आत्मा जो बंद मोक्ष रही थे वो समझ में आता है, तो बात है पर्याय रूप मोक्ष की बात नहीं है, पर्याय रूप मोक्ष की बात वो नहीं है। दिगंबर आचार्यों का कथन का जो जोर है तो आत्मस्वरूप पर है, ये देवयान की चर्चा परिणामों की चर्चा है, तो दोनों भावों के बीच में देवयान करना है ना, परिणाम में देवयान होगा ना, लेकिन आचार्य महाराज ने प्रतिज्ञा क्या किया है कि मैं समय सार को दर्शाऊंगा दिखाऊंगा बताऊंगा। एकत्व विभक्त ऐसा जो शुद्धात्मा है वही दिखाने का मेरा आशय है, मेरा प्रयोजन है, और सभी दिगंबर आचार्यों का यही मूल कहने का आशय वो रहा है, सभी ज्ञानियों का कहने का मूल आशय वही रहा है। जैसे श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि लिखी लिखा था, मैं वो बात लिखा, जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख आनंद, समझा जुनते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। तो मूल बात मूल स्वरूप जो है वही मैं नहीं समझा, पर वही मुझे जो श्री गुरु ने समझाया है उसको मैं नमस्कार प्रारंभ में करता हूँ। पद्धति कहने का जो हेतु है वो तो स्वरूप समझाने का है, और स्वरूप है वो परिणमन रहित है। देखो कि कैसी विचित्र परिस्थिति है कि मूल स्वरूप है तो परिणमन रहित है, और बिना परिणमन को समझाया जाता नहीं, देखा जाता नहीं, वहां तक पहुंचा जाता नहीं, ये एक विचित्र परिस्थिति है।
उसकी विधि 186वीं व्याख्या समझता है
क्या,
उसकी विधि मेरी है कि जो जैसा जानता है वो वैसे हो जाता है, अशुद्ध ज्ञान है आत्म को अशुद्ध है।
उसका मतलब तो वो है कि जो शुद्धात्मा को जानता है तो शुद्धात्मा रूप हो जाता है, शुद्धात्मा उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन तकलीफ क्या है, हमारी विटंबना क्या है कि हम हमारे शुद्ध स्वरूप को जानते ही नहीं, जानते नहीं क्यों कि जो आश्रय भाव है उसमें हम लीन है, एकत्र हो गया हो जाता है, हम बिना जागृत हुए आश्रय में लीन हो जाते हैं, विभाव में लीन हो जाते हैं, एकत्र प्राप्त हो जाता है। ये परिस्थिति इतनी ऑटोमेटिक और स्पीड से बन रही है कि हमारी इच्छा उसमें कामयाब नहीं हो रही है कि नहीं, इसका क्या करें, तो क्या है जानना मैंने क्या, कि जानना मैंने पहचानना, जो शुद्ध स्वरूप को जानता है माने पहचान पूर्वक जानता है। देखो हमको कोई पूछे कि आगरे में आप पद्मचंद जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो उसको जवाब देने का तरीका तो ये है कि देखो भाई नाम से तो जानता हूं, बाकी मुझे कोई अधिक पहचान नहीं है। पूछने वाले ने ये बोला था हमको 5-10 लाख रुपया हमको देना है, अरे तुम पूछेंगे भाई पद्मचंद जी को जानना नहीं जानने का आपका मतलब क्या है पूछने का, तो हमको पैसा देना है। देखो हम नाम से जानते हैं, आगे पीछे की बात नहीं जानते, इसका मतलब पहचानते नहीं है, ये भी जवाब हम देंगे और दूसरा ये भी जवाब देंगे, हम बराबर जानते हैं मतलब पहचानते हैं, आप 10 लाख क्या 1 करोड़ दे दो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जाना किसको कहना, जो पहचान पूर्वक जानता है वही जानता है, बाकी जानता है वो जानता नहीं है। तो 186 गाथा में जो जानता है वो लेना है, वो पहचान पूर्वक जानने की बात है। तो पहचान की बात हम छोड़ दें और जानने की बात पकड़ लें, क्योंकि हमने आगमार्थ से जाना है, आगम से जाना है, शब्दार्थ से जाना है, भावार्थ से जाना है, तो वो जाना जाना नहीं है। वो पांचों से जाना तो जाना नहीं है, पहचान से जाना वो जाना है, ये बात है। पहचान को शास्त्र भाषा में कहते हैं भाव भाषण। पहचान को क्या कहते हैं? भाव भाषण। ये भाव भाषण की जो योजना है, ये योजना है परख करने की योजना है। पहचान मैंने परख करना, आदमी तो आदमी है, मनुष्य तो मनुष्य है। पहचान करने की जो बात है वो परिचय से होती है, परिचय बिना किसी की पहचान होती नहीं। अब परिचय कैसे करें? शुद्धात्मा जो अपरिणामी तत्व है, जो ध्रुव तत्व है, तो उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि वो तो बार में दिखाई नहीं देता। हम क्या समझे कि जो परिणाम में आता नहीं, ऐसा ही लेंगे ना? तो उधर अपन शिविर जो हुई थी महावीर जी ने हुई थी, आपने एक बात किया था कि जो ध्रुव तत्व है, सामान्य तत्व है, वो द्रव के भेद रूप नहीं, गुण के भेद रूप नहीं और पर्याय के भेद रूप नहीं, फिर भी तीनों में सामान्य रूप से है वही वो तत्व है। वो द्रव में भी है, गुण में भी है और पर्याय में भी है। इसलिए तो अनित्य भी नहीं, नित्य भी नहीं, लेकिन अनुभव स्वरूप है। वो चर्चा यहाँ चली थी, चली थी कि
पर्याय कैसे सामान द्रव जो है द्रव में भी है, गुण में भी है और पर्याय में भी है, तो पर्याय तो बना सी गए एक समय की, उसमें सामान द्रव की कैसे?
इसलिए हमने कहा कि जो पर्याय विनाशिक है और तत्व अविनाशी है, है? लेकिन केवल नित्य नहीं है। शास्त्रकार ने क्या कहा, हमारे आचार्य ने, श्री गुरु ने क्या कहा कि केवल नित्य नहीं है, अनित्य नहीं है माना, लेकिन नित्य भी नहीं है। वो माना क्या? पंचाध्यायी अजीत भाई उसमें से तो उलझन में आए थे, पंचाध्याय के गाथा लेके आए, आगरा के शिविर में आए थे। इधर तो आचार्य श्री है, यह कहते हैं कि अनित्य तो व्यवहार नहीं का विषय है ही, लेकिन नित्य भी व्यवहार नहीं का विषय है। अरे हम तो निश्चय का विषय मान करके बैठ गए थे, यहाँ व्यवहार का विषय बताने, व्यवहार का विषय बताते हैं। और जो निश्चय का विषय है वो अनुभव स्वरूप है, न नित्य है न अनित्य है। इसकी जो पहचान है वही पहचान सही है, उसको वो ज्ञान में पहचान से लेते हैं, उसको ध्यान होता है। बाकी तो बहुत आसान बात है। एक समय के पर्याय रूप नहीं है, वो तो अनित्य है, आत्मा तो नित्य है, त्रिकालीय है, शाश्वत है, ध्रुव जाओ, हो गया ज्ञान। क्या ऐसे ज्ञान हो जाता तो ध्यान हो जाता, और ध्यान हो जाता तो निवेड़ा हो जाता, लेकिन किसी का हुआ नहीं है। तो हमने बहुत इरादा से इंटेंशनली वो बात ना रखा था, कुछ विद्वान लोग भी आए थे वहाँ, और हमारे यहाँ तो चलती है समय सार, तो सब पढ़ते हैं। और आजकल ध्रुव दृष्टि प्रकाश भी प्रकाशित हो गया, बहुत साल हो गया,
आपने किया
लोग वो भी पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो ध्रुव 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 की धुन चला देते हैं। ऐसे नहीं चलता, हमने प्रकाशित किया है, संकलन किया है, लेकिन सोच समझ करके किया है, ऐसा नहीं किया है। इसके पीछे हमारी कोई समझदारी है, ऐसे ही बोला बोल दिया इसलिए लिख दिया, ऐसी बात हम लिखते ही नहीं।
उसको वहाँ लिखना चाहिए था आपको
है?
उसको वहाँ लिखना चाहिए ताकि कोई भ्रम में ना पड़े।
लिखाया हमने बहुत ब्रैकेट भराया हमने, कई जगह पे ब्रैकेट भरे हैं, बहुत जगह पे भरे हैं, इसलिए कि कोई भ्रम में नहीं आ जाए, इसीलिए तो स्पष्टीकरण दिए हैं ब्रैकेट में। तो बात वो है कि वो अनुभव स्वरूप है। देखो उसका लॉजिक बहुत बढ़िया है, जो केवल नित्य होता, केवल ध्रुव होता और अनित्य होता ही नहीं, तो ज्ञान लक्षण रूप अनित्य पर्याय से पाया नहीं जाता।
ज्ञान लक्षण अनित्य पर्याय है,
ज्ञान ज्ञान लक्षण है, समयसार में इसका परिशिष्ट लिखा है और सूत्र जी में तो बात आया उपयोग लक्षणम। कौन सा सूत्र लिखा है उमा स्वामी महाराज ने? उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण क्या लिया? उपयोग। तीन काल में उपयोग लक्षण बिना जीव को पहचाना नहीं जाता और बिना पहचाना जाना नहीं जाता और बिना जाना लीन हुआ नहीं जाता, ध्यान में आता है, ध्येय बनता नहीं। ध्रुव तो ध्येय है, ध्येय बनता नहीं, बात है भूल में पहचान की, इसलिए उपयोग लक्षण हम किया। और सारे समय सार में आचार्य श्री ने ये पहचान का विषय कहीं छेड़ा नहीं। 415 गाथा की जो टीका की है वो टीका में पहचान की छेड़ करके कोई बात नहीं की। विकल्प हो गया आचार्य श्री को कि सारे समय सार में महत्वपूर्ण जो बात पहचान के वो तो कहीं मैंने की नहीं, तो उसका खास प्रकरण परिशिष्ट में लिया उन्होंने, जोड़ दिया एक बात को जो ग्रंथों में एनेक्सी कहते हैं ना कि हमको कुछ बात और कहनी है जो रह गई है, वो तो बात जो महत्वपूर्ण रह गई थी वो तो लक्षण लक्षण की चर्चा की बात थी कि लक्षण से कैसे कैसे पहचाना जाता है। हम देखिए हमारी भूल कहाँ होती है कि पर्याय को हम अनित्य पर्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना? पर्याय द्रव्य का अंग है क्या? नहीं है। पर्याय द्रव्य का अंग है या कोई स्वतंत्र वस्तु है? द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य है, क्या है?
दृष्टि के विषय से तो स्वतंत्र परिणाम
है,
दृष्टि के विषय से तो स्वतंत्र परिणाम है उसका अंग तो नहीं।
दृष्टि के विषय से हम नहीं पूछते हैं क्योंकि दृष्टि का विषय तो भी निश्चय करना है, नक्की करना है। पदार्थ के अंगभूत पर्याय है कि नहीं है?
हाँ।
तो पदार्थ के दृष्टिकोण से, द्रव के दृष्टिकोण से पर्याय को देखा तो भी क्या है? लक्षण लक्षण की चर्चा में प्रश्न उठाया खुद आचार्य महाराज ने कि ये पर्याय की चर्चा आप कर रहे हो, हमको तो द्रव चाहिए। ज्ञान लक्षण आप बता रहे हैं वो तो पर्याय में है पर हमको ढूंढना है द्रव्य को, हमको चाहिए राम और आप कथा करते हैं कृष्ण की, ये बात हो जाएगी? तो कि नहीं नहीं हम भी सोच समझ करके कहते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि पर्याय जो ज्ञान है, पर्याय में जो ज्ञान है वो तो द्रव्यपने से अभेद है। देखना है क्या शब्द लिया है, देख पा
पर्याय
ध्रुव पर्याय पर्याय तो पर्याय है भी लेकिन पर्याय टुकड़ा नहीं है। हम ध्रुव पर्याय दो करके जो टुकड़ा करते हैं वो टुकड़ा करने में हमारी कल्पना है, इसलिए समय सार के पिछोकर गाथा से उन्हें सी गाथा अभी उसी अधिकार में है, आश्रय अधिकार में, उसमें बात लिया है कि एक पर्याय विनष्ट होती है तो दूसरी पर्याय को प्राप्त करके विनष्ट होती है। इसका मतलब क्या? उसके पलटती हुई पर्याय में कोई अन्वय तत्व है जो प्रवचन सार के 80 गाथा में लिया है, अन्वय शब्द लिया है। अन्वय मैंने चालू रहना, अन्वय मैंने चालू रहना, द्विध्रुव तत्व है। तो वहां लक्ष्य लक्षण की चर्चा में वो जवाब दिया है कि ये तो भेद हो गया द्रव्य पर्याय का, लक्ष्य लक्षण का भेद हो गया, लक्षण पर्याय में है, लक्ष्य है उसका स्वरूप ध्रुव, तो वो कैसे मेल खाता है? पता नहीं।
अंदर तत्व को द्रव्य से ले सकते
है,
अंदर ये तत्व है उसको द्रव्य से
धर्म मैंने धर्म द्रव्य मतलब क्या
संवय तत्व है ना, अन्वय तत्व जो आपने कहा ना जो पर्याय परती रहती है, एक जो नाश्ती होती है दूसरी आती है, तो उसी को अन्वय तत्व कहते हैं। अन्वय तत्व माने द्रव्य शुद्ध,
तो वो अन्वय ध्रुव तत्व है,
ध्रुव तत्व
है, ध्रुव तत्व।
तो जो अन्वय तत्व जो ध्रुव तत्व पाया जाता है उसी को धन द्रव्य कहेंगे, किसको कहेंगे धन द्रव्य का मतलब यहाँ पर समय किस प्रकार से
धर्म मैंने क्या कहना, धर्म मैंने क्या कहना था, धर्मास्त्र क्या लेना चाहते क्या?
चलो मैं भगवान में
पूछूंगा। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा चलो, क्या वहाँ जवाब दिया है कि द्रव्य पने से लक्ष्य लक्षण भेद नहीं है, अभेद है, मतलब जो लक्षण है वही लक्ष्य है। क्या लक्षण है वही लक्ष्य है, वो तो आप बोले गुरु है हम ना नहीं दे सकते, लेकिन समाधान तो प्राप्ति से होता है, बिना प्राप्ति से समाधान नहीं होता, सुनने मात्र से समाधान नहीं होता। आपने बोल दिया, लॉजिक भी दे दिया कि द्रव्य का अंश होने से द्रव्यपने से अभेद है, इसलिए पर्याय को द्रव्य के दृष्टिकोण से देख लो, पर्याय को पर्याय के दृष्टिकोण से अब मत देखो, इस वक्त द्रव्य के दृष्टिकोण से देखो। हाँ, लेकिन वो प्राप्त कैसे होता है? हमको तो प्राप्ति से मतलब है, हमको ध्रुव की प्राप्ति चाहिए। हाँ, तो आचार्य श्री ने वहां उत्तर दिया है कि प्रसिद्ध ही ज्ञानम, तेरा ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रगट है। क्या लिखा है? संस्कृत शब्द है प्रसिद्ध ही ज्ञानम, ज्ञान मात्र से संवेदन सिद्धत्वात्। इतना उत्तर दिया है, जो मात्र ज्ञान है, अकेला ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, उसके स्वसंवेदन से सिद्धि माने प्राप्ति है। तुमको प्राप्ति करना है ना, तुमको प्राप्ति करना है तो स्वसंवेदन से प्राप्त होता है। मात्र ज्ञान देना, अकेला ज्ञान देना, सामान्य ज्ञान देना, और सामान्य ज्ञान वेदन रूप है। स्वपना इसको छोड़ करके और जगह किया है, स्वपना इस वेदन में करने से, स्वपने से अनुभव में आने वाला ज्ञान वही आत्मा है। और 13 नंबर के कलश में वही कहा कि जो आत्मानुभूति है वो ज्ञानानुभूति है, वास्तव में जो आत्मानुभूति है वो ज्ञानानुभूति है, क्योंकि ध्रुव का अनुभव किसी को होता नहीं। ध्रुव का अनुभव होता है क्या? पर्याय का अनुभव, और पर्याय में किसका अनुभव होता है? कि ज्ञान वेदन का अनुभव होता है। इसलिए 17 अखाड़ा गाथा में लिया कि जो मोक्षार्थी है, मोक्षार्थी मैंने मोक्ष का ध्येय करने वाला है, वो कंडीशन लिया है, वहां भी वो शर्त लिया है मोक्षार्थी पने का, कि जो मुमुक्षु हुआ है, ध्येय बदला है, उसी को भेद ज्ञान हो सकता है, दूसरे को तो होगा ही नहीं चाहते हुए भी। तो पहले ये देखना है कि मोक्षार्थी हुए कि नहीं हुए, उसी को आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आई रहा है। क्या कहा कि नहीं कहा? तो ये जो ज्ञान वेदन है, सामान्य ज्ञान है, जो यूं का यूं रहता है,
जो अविकृत रूप रहता है, जो शुद्ध रहता है, और जो कषाय के अभाव स्वरूप है, एक रूप है, कोई आत्मा का स्वरूप है, वही आत्मा है, और कोई आत्मा दूसरा है ही नहीं। वो पर्याय में है और पर्याय में पाया जाता है, लेकिन केवल पर्याय रूप होता तो विनष्ट हो जाता, और केवल अपर्याय रूप नहीं होता, नित्य होता तो पर्याय में से पाया नहीं जाता, इसलिए अनुभव स्वरूप बताया है। अनुभव स्वरूप क्यों बताया? तो नहीं कह सकते कि नहीं 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 ध्रुव 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 मैंने नित्य ही है, छोड़ो पर्याय की बात, नहीं केवल ध्रुव भी नहीं है, केवल नित्य भी नहीं है। अगर तुम केवल नित्य कहते हो तो व्यवहार को ही निश्चय मानते हो।
सिद्धांत पूर्ण प्रयाय वर्तमान का कारण नहीं है, सिद्धांत को दिया है, सिद्धांत बाधित होता है इसमें। पूर्ण पर्याय जो है वर्तमान की, उससे पूर्ण पर्याय वर्तमान की प्रयाय का कारण नहीं है, ऐसा सिद्धांत हमने स्वर्ग में पढ़ा था, इसमें तो सिद्धांत बाधित होता है।
वो पूर्व पर्याय कारण नहीं है, वो बात रही निश्चय की, वो बात रही निश्चय की, व्यवहार से पूर्व पर्याय भी कारण है। हाँ तो ये तो देव गुरु शास्त्र भी असत्यार्थ है, मोक्ष भी असत्यार्थ है, सम्यक दर्शन भी असत्यार्थ है। क्या सम्यक दर्शन भी व्यवहार नहीं का विषय है, शुद्धोपयोग भी व्यवहार निश्चय का विषय है, केवल ज्ञान भी और सभी असत्यार्थ है। गोखन पट्टी करने से तो कोई फायदा है ही नहीं। आगम अध्यात्म का अविरोधपना तो है कहीं कि विरोधपना है, हा? है क्या नहीं? समय सार 320 गाथा जैसे नाचार की टीका परम पारिणामिक भाव की बात चली है और किसी भी पर्याय मोक्ष का कारण नहीं। मोक्ष का कारण कौन? एक त्रिकाली परम पारिणामिक भाव ही मोक्ष का कारण है। तो द्रव्य पर्याय का कारण ले लिया कि नहीं ले लिया? कैसे? परम पारिणामिक भाव तो द्रव्य है और मोक्ष तो पर्याय है, तो वो मोक्ष की बात हम नहीं करेंगे। हम तो इस मोक्ष की बात करने के जो करने का नहीं है, है ही अनादि से, लेकिन आगम अध्यात्म का अविरोध है, विरोध नहीं है कहीं भी, और वही भगवान की वाणी का तात्पर्य है। उभय नय विरोध धनसिनी श्यात पदांके जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहाहा। उभय नय ऐसे तो विरोधी है, व्यवहार निश्चय दोनों नय विरोधी है, लेकिन जिन वचन ऐसा है कि जो दोनों विरोध का ध्वंस करने वाला है, वहां जो रमता है ऐसा हो करके मोह को वमन करके वहां रमता है, उसी को ये समय सार का कलश है, 4 नंबर का, उसी को स्वानुभव होता है। तो हमको सब बातों का मेल करना है, चाहे कोई बात पंचाध्यायी में कही हो, चाहे कहीं बात समिसार में कही हो। तो ये प्रश्न निकला कश्मीर में अपने, ये तो पंचाध्यायी में कहा है, समिसार में कहाँ कहा है? तो हमने कहा कि समिसार में ये बात बहुत जोर से कहा है, आचार्य श्री ने किसी गाथा पे कलश रचे, किसी गाथा पे नहीं रचे, किसी गाथा पे एक, किसी गाथा पे 2 कलश बनाए, किसी गाथा पे 5 कलश बनाए, किसी गाथा पे 9 कलश बनाए, लेकिन इस विषय पर 26 कलश बनाए। कितने हैं? बनाए कि नहीं बनाए हैं? तो कह सब ये तो ऐसे इस बात को तो ख्याल में नहीं आई कि आत्मा शुद्ध रूप भी नहीं, अशुद्ध रूप भी नहीं, आत्मा नित्य भी नहीं, अनित्य भी नहीं, आत्मा भेद रूप भी नहीं, अभेद रूप भी नहीं, ऐसे 26 कलश लिखे हैं। अनुभव स्वरूप दिखाने के लिए तो 26 कलश समयसार में लिखे हैं। तो ये जो है बात तो मेल खा करके आती है इस जगह पे, हमारा प्रयोजन कहाँ है? हम मुमुक्षु हैं। हमारा प्रयोजन कहाँ है कि इस समयसार तत्व के अनुभव स्वरूप तत्व की प्राप्ति करना, अनुभव करना, ये हमारा प्रयोजन है। इस प्रयोजन को ध्यान में रख करके हम स्वाध्याय करेंगे या प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कम कितने टाइम हो? 8:30 से 9:30, 10 मिनट ज़्यादा चला गया। 5-7 मिनट तो ज़्यादा चली गया।
कैसे तो बोले घंटे का
है। अच्छा, 1-2 मिनट ले लेते हैं, फिर कल विस्तार से लेंगे। तो इसलिए जो योजना ज्ञानियों ने बनाई होगी पूरा, इस योजना से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर हम ऐसे ही शास्त्र पढ़ डालेंगे, समझ लेंगे, वस्तु को पहचानेंगे नहीं, और पहचानेंगे तो नहीं तो जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो अनुभव होगा नहीं। तो इसलिए इस तरह से ये बात को लेना है। हम
लाइफ के मंदिर में 8:30 से 9:30 तक का है बड़े मंदिर, आप सब लोग नहीं आए, हमको 8:30 से 9:30 ऐसे ही कन्वेंशन नहीं होगा।